గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయ తదాయ కృష్ణాయ కృష్ణ భక్తాయ సర్వభక్తాయ నమో తత్వాసుదుస్తయ సురేషితరాజ్య లక్ష్మి ధర్మీష్ఠయార్యవచసాజగదాదరన్నం మాయామృగం దైతే సితమన్నధావ వందే మహాపురుషతే చరణారవిందం సరపరిపవర్ణమేష్టదో భిత్యాహం ప్రణతపాలభవాభిపోతం వందే మహాపురుషతే చరణారవిందం వందే మహాపురుషతే చరణారవిందం సర్వప్రథమం అస్మదీయ గురుపాద పద్మం ఈ మంచి పర విరాజమాన తథా నిత్య లీలా పృష్టం విష్ణుపాద అష్టోపసుత శిష్యమాన భక్తి వేదాంత భావం గురుస్వామి సంచారణ అసంఖ్య కోటి దండభక్తానికి జ్ఞానం చెప్పాను. తదనంతరం ఉపస్థితి పూజనీయ వైష్ణవులు సంస్కృతి సజ్జన మాట్లాడిన ప్రణామం వందే మహాపురుషతి చరణాదే భగవాన్ శ్రీహరి జబ్కి నిత్య ధామ్ నిత్య సాకేత్ ధామ్ సే ఇస్ భూతల్ పర్ అయోధ్య కి భూమి మే జహా స్వయం దశరథ్ కే పుత్ర హోకర్ జన్మ గ్రహణ కియా. భగవాన్ కా జన్మ ఔర్ ఉన్కా కర్మ సదైవ అలౌకిక అప్రాకృత ఔర్ దివ్య కహా గయా హై. యే స్వయం భగవాన్ నే హీ కహా హై. इस धरती पर दो श्रेणी के मानव होते हैं या प्राणी होते हैं, एक दैवी स्वभाव के दूसरे और असुरी स्वभाव के. जो दैवी स्वभाव के हैं वे सभी भक्तजन होते हैं, उनके हृदय की भावना और भक्ति उमड़ती है, वे प्रभु के दर्शन के लिए ललचते हैं. जबकि युग युगांतर तक भगवान की श्रीमूर्ति की सेवा करते हैं, उनकी भक्ति साधना करते हैं, जबकि उनके अंदर में आकुल उत्कंठा प्रार्थना व्याकुलता जाग उठती हैं कि प्रभु को हम साक्षात रूप में पाए, वे हमारे सामने आए और हमें दर्शन दें और उनकी हम सेवा करें. तब युग युग में भगवान स्वयं भक्तों के आकुल उत्कंठा व्याकुलता और प्रेम की उमड़ती हुई भावना को देखकर स्वयं यहाँ अवतरित होते हैं. दूसरी ओर जहाँ विषयी भगवत विमुख नास्तिक जो कि विरोधी स्वभाव की आसुरिक संपन्न व्यक्ति, वे लोग क्या करते हैं, अपना स्वार्थ पेट पूजा दूसरों का पीड़न और हिंसा शत्रुता ये सब के द्वारा और लुंठन इत्यादि के द्वारा जबकि अपना स्वार्थ अपना मतलब को देखते हैं. ऐसे लोगों की नजर में भगवान का दर्शन कभी होता ही नहीं है और ना ही वे दर्शन कर पाते हैं. परंतु जब ऐसे दुष्ट राक्षस लोग जबकि भक्तों के प्रति उत्पीड़न करना शुरू कर देता है, अत्याचार शुरू करता है, ये सब देख करके भगवान श्री हरि स्वयं ही अवतरित हुआ करते। इसलिए अष्टविंशति वैवस्वत मन्वंतर के, जबकि ब्रह्मा जी के एक दिन में वैवस्वत मन्वंतर के अष्टविंशति युग के त्रेता में स्वयं भगवान श्री हरि जो कि श्री राम रूप में स्वयं जो नित्य साकेत धाम में विराजमान है, वे स्वयं अपने पार्षद परिकरों के साथ में अवतरित होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में वंदना की है, ध्येयं सदा परिभवन्नम अभीष्ट दोहम, जो कि समस्त भक्त जनों के अभीष्ट देवता है। दोहम अभीष्ट प्रेम संपत्ति को देने वाले, प्रदान करने वाले, और स्वयं भगवान श्री हरि भक्तों की प्रेम सेवा को ग्रहण करने के लिए स्वयं दौड़ करके स्वयं ही आ जाते हैं। इस प्रकार के जो ध्येयं सदा परिभवन्न, जो समस्त प्रकार के दुख क्लेश आरती उनके दर्शन जनित जो विरह हैं, इस विरह आरती को प्रशमित करने के लिए प्रभु स्वयं अवतरित होते, जो कि परिभवन्नम अभीष्ट दोहम भित्यार्थी अहम प्रणत पाल भवाब्धिपूतम। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र गण, बड़े बड़े ऋषि गण, जो कि उनके सभी सेवक भृत्य बन करके प्रार्थना करते हैं, ऐसे स्वर्णागत जनों के प्रति जो अपार अनुग्रह कृपा करुणा करने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि अवतरित होते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणार विंदन, ऐसे महान पुरुष जो कि भगवान श्री हरि और युगों में और समय में मानव कुल में जो कि मनुवंश में अवतरित हुए हैं, कहीं देवताओं के कुल में आए हैं और प्राणियों के वंश में भी, प्राणियों के कुल में भी भगवान श्री हरि अवतरित हुए हैं। जदा कदा आए और गए, आए और साथ ही साथ कुछ न कुछ अपना काम समाधान किया करते हुए साथ ही साथ निकल गए, अधिक देर तक रहे नहीं। परंतु भगवान की ऐसी अपार करुणा है, जो कि संसार में विख्यात हुआ दो मानव वंश, एक सूर्य वंश और दूसरा चंद्र वंश, इन दोनों वंश के जो भक्त जन हैं, उनकी भक्तों की आरती भावना भक्ति को देख करके भगवान ने अपार करुणा वरुणा लाए, जो कि करुणा करते हुए स्वयं अवतरित हुए हैं, सूर्य वंश में आए हैं, महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। इस प्रकार जो कि श्रीमद् भागवत जी में वंदना करते हुए यह कहा, वंदे महापुरुष तेजो महान पुरुष, समस्त जीवों के जो अंतर्यामी, जो काल रूप में हैं, जो सबके नियामक हैं, सबके परिचालना करने वाले, और ऐसे प्रभु लीलामय श्री हरि जीवों के प्रति अपार करुणा करके अपनी करुण वरुण लीलाओं को जगत में प्रकाशित करने के लिए स्वयं भक्तों के सामने उपस्थित हुए हैं। ऐसे जो महान पुरुष, हम उनके चरणों में वंदना करते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग में श्री परिचय जी को दो अध्याय में राम कथा का श्रवण कराया, जिसमें गुरुवर थे, गुरु के लिए अर्थात पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए जिन्होंने वन में प्रवेश किया, और आपने ये कथाएं सुनी है जहाँ विश्वामित्र जी की प्रार्थना थी कि हमें दोनों बालक चाहिए, उन दोनों बालकों को राम लक्ष्मण को लेकर के गए और जा करके परीक्षा करते हुए उनको अस्त्र विद्या दी, सारे अस्त्र विद्या सिखलाते हुए तारका का वध करवाया, इस प्रकार निशाचर राक्षसों से यज्ञ भूमि की सुरक्षा हुई, फिर मिथिला में जाकर के जनकपुरी में सीता जी का पाणी ग्रहण किया, उसके पश्चात सभी भाइयों के साथ में जबकि अयोध्या में प्रवेश किए, स्वागत अभिनंदन आदि के द्वारा बड़ा समारोह मनाया गया, और उसके पश्चात गुरुवर थे जो गुरु पिताजी की आज्ञा अर्थात पितृ सत्व पालन के वाहन है, जो कि स्वयं वन में प्रवेश किए 14 वर्ष के लिए वनवास को स्वीकार करते हुए वे जीवों की और देवताओं की समस्त प्राणियों की सुरक्षा संरक्षा के लिए उन्होंने राक्षसों का विनाश करने का संकल्प लिया और वनवास को स्वीकार किया। इस प्रकार जो कि लंकाधिपति राक्षस राज रावण, जिसको श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं लोग रावण रावण, कि वो रावण कौन था जो कि संसार को रुलाने वाला, जिसने सारे संसार को रुलाया, सबके आंखों से पानी बहाया, ऐसा एक व्यक्ति उसका नाम है रावण। वह लोग रावण रावण राक्षस राज रावण जो कि लंकापुरी में सोने की लंका बनाने और सारे देवताओं की जो स्त्रियां और अप्सराएं बड़ी बड़ी सुंदरी स्त्रियां और देवताओं देवियों को भी हर करके लाया और उनके साथ में निवास की, जिनके 1,25,000 पुत्र 1,25,000 नाते और पूर्ण स्वंश के साथ केवल अहंकार अभिमान के शिखर पर पहुंचे, पहुंचने के कारण उस रावण का विनाश हुआ। दूसरी बात, जबकि रावण वह जानता था कि भगवान श्री हरि जो हैं वो राम रूप में आए हैं और उनके पास में सबसे बड़ी शक्ति है सीता देवी, और इस सीता देवी के कारण ही पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान बने हुए हैं, कि पूर्ण ब्रह्म की शक्ति को यदि हम छीन लें और उसको अपने मुट्ठी में बस में कर लें तो मैं पूर्ण शक्ति के अधिकारी बन जाऊंगा, मैं भी ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म बन जाऊंगा। ऐसे दुष्ट रावण का यह विचार था, इसलिए उस शक्ति को हरण करने का प्रयास किया और उसने भरसक प्रयास कर दी, सारी लंकापुरी को और सारी सेनाओं को सारे विद्या बुद्धि अस्त्र शास्त्रों को सब को झोंक डाला दे दिया। इस प्रकार रावण ने भगवान की शक्ति को हरण अपहरण करना चाहिए
बोलो,
तो ऐसे जो है तो भगवान से हरी
श्लोकों का अर्थ बोलो।
तत्वा सुदुष तजस्वरे सितराज्य लक्ष्मी, जो देवताओं के भी वांछनीय राज्य लक्ष्मी संपदा और राज्य वैभव इस सब को छोड़कर भगवान श्री राम जो कि वन में प्रवेश किए और सर्वत्र भ्रमण करते भी जीवों पर अपार करुणा की, धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगादरन्नम, आर्य वचन पिता दशरथ जी के वचन को जो कि पालन करने के लिए वे जदगादरन्नम वन में प्रवेश किए और उसके साथ ही माया मृगम दैते सीतमन्नधाव, उनकी प्रिय दैता जो कि सीता देवी, ऐसे सीता देवी के लिए जो कि ये माया मृग जो कि ये सोने का हिरण बन करके आया और उसके पीछे चलते हुए जबकि इधर से छाया सीता का रावण ने हरण कर दिया, और उस समय उनके विरह में व्याकुल होकर चलते हुए जीवों के प्रति अपार करुणा का मार्ग प्रदर्शन किया और अपार करुणा का वर्षण करते हुए सभी पर कृपा करते हुए लंकापुरी पर पहुंचे और जाकर के वहां उन्होंने लंका का विजय किया। और दूसरे ओर से अर्थ करते हैं माया मृगम, जो जीव माया में अज्ञान में अंधकार में फंसे हुए हैं, ऐसे जीवों के प्रति अपार करुणा करते हुए भगवान श्री राम ने जो कि मर्यादा की स्थापना की और अपने जीवन में आदर्श को दिखलाते हुए जीवों की संसार गति किस प्रकार होती है और इस माया मोह को छोड़कर जबकि प्रत्येक जीव अपनी ओर आकर्षित हो, इसलिए उन्होंने ऐसी करुण वरुण लीलाएं की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भारत भूमि में आज विश्व भर में कोने कोने में ऐसा कहीं स्थान नहीं जहां राम कथा नहीं होती हो, और उन कथाओं के द्वारा सबका पाषाण हृदय भी विगलित हो जाता है और सभी भक्ति में इस प्रकार अनुप्राणित हो जाया करते हैं। ऐसे ही वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसे महान पुरुष भगवान श्री राम जी के चरणों में, उनके स्वपरिकर श्री राम जी के चरणों में हम सभी लोग वंदना करते हैं, नमन करते हैं। बंछा गौ दुर्वश कृपा सिंधु दैव च परितारणम।
दीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, सतयुग में किस रूप में उनका वर्ण क्या होता है, उनका नाम क्या होता है, उनकी उपासना कैसी होती है, ये बतलाइए। फिर त्रेता युग के लिए पूछा, फिर द्वापर युग के लिए पूछा और अंत में कली के लिए पूछा। ये जो श्लोक है किसके लिए है? कलयुग में जो अवतार होगा उसके लिए है। ऊपर से दिखता है रामचंद्र जी का, किंतु रामचंद्र तो त्रेता में हो गए हैं, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसका महाप्रभु के पर अर्थ दिखलाया। श्याम बोलो तो इसका महाप्रभु के अर्थ में कैसे लगेगा, संक्षेप में बोलना। संक्षेप में
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आपदाम अपहंतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाधिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति जीवन जनानी गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हर की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तरुप्राण मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए इनके हर की कृपा की प्रार्थना करते हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवगण मातृजन सभी के चरणों में यथा योग प्रणाम करते हुए हर की कृपा की प्रार्थना। महाराज जी के आदेश से आज इस राम जन्म के तिथि पर जहाँ पर भगवान के जुगावतारों की कथा नौ जोगेश्वर संवाद में निमी महाराज के समक्ष में श्रवण करा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने प्रश्न किया था कि किन किन युगों में भगवान के कौन कौन से अवतार होते हैं, चारों युगों में उनका क्या रंग होता है, उनका क्या आकार प्रकार लक्षण होते हैं। तो उसमें शुक्ल रक्त तथा पीत गर्गाचार्य भी बताए चारों युगों का, जिसमें सतयुग का शुक्ल और त्रेता युग का रक्त वर्ण है। शुक्लम रक्त तथा पीत, पीता अर्थात कलयुग का बोले इदानीम द्वापरे कृष्ण तांगत, तो जहाँ पर जो ध्येयम सदा परिभवक नविष्ट दो हम त्यक्वा सुदुष्ट राजलक्ष्मी इसका वर्णना करते, तो उसके अगले श्लोक में ठीक बोलते कृष्ण वर्णन तिविसा कृष्णम सांगो अंग पार्श अस्त्र पार्षदम जज्ञे संकीर्तन पराये दजंते ही सुमेधस। यदि त्रेता अवतार की बात करते तो कृष्ण वर्णन तिविसा कृष्ण कलयुग का जो युगा उतार है उस और कलयुग का जो विशेष जो धर्म है नाम संकीर्तन इसका तुरंत वहां पर नहीं बोलते। इससे स्पष्ट होता है कि जो श्लोक है महाप्रभु के संबंध में बता रहे, क्योंकि श्लोक का जो अर्थ होता है हमारे चक्रवर्ती पाद जी जो किए तक्त्वा सुदुष्कृत सुरसित सुरसित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठयाज्य वचसा जदगादरण्यम माया मृगम दैतेप्सित मन्वधाव वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मैं उस महापुरुष को महान पुरुष से वह गौर हरि की वंदना करता हूँ जिन्होंने तक्त्वा सुदुष्कृत सुरसित राज लक्ष्मी, जिनके पास ऐसे राज्य लक्ष्मी विष्णु प्रिया देवी देवताओं के लिए जो इप्सित जो उनके पास विद्या विद्या रूपक जो वैभव जिस विद्या को धारण करके बृहस्पति आदि बड़े बड़े देवता लोग जिस विद्या को प्राप्ति के लिए तरसते थे, ऐसे विद्या के ऊपर भी ऐसे दर्शन आदि के ऊपर लात मार करके न्याय प्रवृत्ति को और जिन्होंने राजपाट को सबको परित्याग कर दिया सुरक्षित राज लक्ष्मी इसलिए धर्मिष्ठ आर्य बचसा। कभी महाप्रभु जी नगर संकीर्तन करते थे और कभी रात्रि में श्री बाह जी के यहाँ पर कीर्तन में इतना तल्लीन हो जाते थे कोई विप्र उनके दर्शन के लिए आना चाहता था और उनको दर्शन नहीं प्राप्त हुआ किसी कारण में। ऐसा भी घटना आती है कि विप्र शायद दूध पान करते थे तो महाप्रभु जी बोले दूध पीने से क्या भगवत दर्शन हो जाते, किसी तरह उनका अभिमान था तो दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ, जिसमें विप्र बड़े असंतुष्ट होकर के और गंगा स्नान के समय किसी वक्त अपने जनेऊ को तोड़ते हुए उनको श्राप दिया कि तुम्हारा जो गृहस्थ धर्म है संसार धर्म वो नष्ट हो जाए क्योंकि तुम हमें उस भागवत कीर्तन से वंचित कर रहे। महाप्रभु जी हस्त ब्राह्मण के श्राप को स्वीकार किए, इसमें धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगादरण्यम उनके वचन को सत्य करते हुए जिन्होंने अपने राज को प्रिया को विद्या को वैभव को सुख संपत्ति को इतने सारे भक्तों के जो नवद्वीपवासियों का प्रेम था जिस प्रेम को छोड़ना क्योंकि जो बचपन का जो संबंध प्रेम होता है बहुत दुस्तर होता है, जो बचपन के संगी साथी होते हैं उनको त्याग करना व्यक्ति सब छोड़ सकता है लेकिन वो स्मृति वो धाम वो गंगा जी के तट पर जो विचरण वो गोप बालिकाओं के ब्राह्मण कन्याओं के साथ जो हास परिहास कि तुम लोग मेरी पूजा करो मैं ही सर्वोत्तम देवता हूँ क्योंकि मेरे चरणों को शिव विरंची आदि तीर्थास्पदम शिव विरंची नूतम शरण्य जिनकी तुम भजन करते हो वंदना करते हो जिस शिव आदि के लिए जिस देवी देवता की पूजा करते हो तो सब हमारे चरणों की पूजा करते हो। आमा पूज आमी दिवो वर देवी दुर्गा दासी मोर महेश किंकर जब ब्राह्मण कन्या उनकी पूजा न करके वहां से अपने पुष्प माला को लेकर जाने लगते तो कई बार महाप्रभु जी उनसे छीन करके ले लेते, कई बार पूर्व में ही धारण कर लेते जब वो स्नान करने को जाती और यदि कुछ भाग भी जाती तो उनसे महाप्रभु जी बोले जाओ कोई बात नहीं लेकिन ध्यान रखना अगर तुम लोग हमारी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें बूढ़ा भर्ता की प्राप्ति होगी, बूढ़े पति मिलेंगे और एक एक के साथ साथ सौतने होंगे सौते होंगे। इस तरह से जब वो बोलते तो सभी गोप ब्राह्मण कन्याएं थोड़ी सी घबरा करके कहीं ऐसा अमंगल न हो जाए महाप्रभु जी के पास आते हो जो उनके जो पात्रों में रखा हुआ पुष्प चंदन आदि होता है महाप्रभु जी के ऊपर फेंक करके और वहाँ से हंसती हुई अपने अपने घरों को चले जाती, कोई असंतुष्ट नहीं होता। तो कहने के तात्पर्य कि इस तरह के जो प्रेम उसको त्याग करके जो नीलाचल के ओर प्रस्थान करते हैं जिन्होंने कटवा में आकर के संन्यास को ग्रहण किया तो त्यक्त्वा सुदुष तज सुरक्षित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जद अगाध अरण्य मतलब जिन्होंने वन का आश्रय लिया संन्यास का आश्रय लिया सर्वस्व त्याग किया क्योंकि बिना सर्वस्व त्याग किए गोविंद के भजन का जो अनुभव है प्रेम की अनुभूति वो नहीं होती, इसलिए महाप्रभु जगत शिक्षा के लिए सर्वस्व त्याग करके नीलाचल और उत्तर भारत की ओर दौड़ते हुए दक्षिण भारत को जो गए और जो माया मृगम दैत्य जीवों का जो सदैत होता है प्रिया होता है प्रियतमा होती वो होता है माया। माया कहने जो स्वर्ण रुपया पैसे जगत के जो सुख संपत्ति है तो जो माया मृग के प्रति माया रूपी क्योंकि जब राम जी के परक में जो उनकी व्याख्या थी तो वहां पर चक्रपाल यही बोले माया मृगम माया मृग यते अर्थात जो स्वर्ण मृग की ओर दौड़े थे और यहाँ माया मृग मतलब सोना रूपी माया को दौड़ते हैं संपत्ति रूपी माया को दौड़ते हैं ढूंढने के लिए उसको प्राप्ति करने के लिए दयता समझ करते ऐसे जीवों के प्रति जो दौड़ते हुए गए और बोले भाई जगत का जो माया है जो मृग है जो संपत्ति से जीव को शांति नहीं मिलती जीव को तो शांति नंद नंद के भक्ति में मिलती है क्योंकि रसखान जी का एक पद आता है प्रसंग अनुसार कहूँगा कहा रस खानी सुख संपत्ति सुमार कहा और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को कहा साधे पंचानल कहा सोए बीच जल और कहा जीत लाए राज सिंधु आर पार को जप बार बार व्रत संजम बयार व्रत तीरत हजार अरे बुझत लवार को कियो नहीं प्यार नहीं सेयो दरबार चित चाहो न निहारो जो पे नंद के कुमार को अगर नंद नंदन श्याम सुंदर का दर्शन इस जीवन से प्राप्त नहीं होता तो सुख संपत्ति वैभव ये सिंधु आर पार के राज ये सब क्या करेगा। यदि कोई पंचानन को तपे गर्मियों में पंचांगियों को ताप ले बरसात में जल के नीचे खड़े हो जाए और बड़े बड़े तपस्या कर उल्टा लटक जाए कांटों पर सो जाए सूली पर चढ़ जाए उससे भी क्या होगा और भस्म आदि रमाने से भी क्या होगा हजारों बर्तन उष्ठानों से भी क्या होगा यदि सब करके नंद नंदन की प्रीति नहीं हुई तो जितने भी माया है सब व्यर्थ है। ऐसे जीवों को जो शिक्षा दी देते हुए बोले कृष्ण 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 हे राम राघव इत्यादि बोलते हुए जो दक्षिण भारत पूरे भारत के अनंत प्रांतों में जीवों को जो भगवत भक्ति को आकर्षित किए माया मृग से हटा करके माया मृगम नहीं मन वधावत बंदे महापुरुष ते चरणारविंद ऐसे महापुरुष श्री गौरहरि को हम वंदना करते हैं उनकी आराधना करते हैं उनकी आराधना के पद्धति में ही बदला है कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्ण क्योंकि इस श्लोक के बाद में इस श्लोक की अवधारणा हुई है इस श्लोक का पठन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्ण जो वर्ण से तो कृष्ण है कृष्ण वर्णम अथवा कृष्ण वर्णयति जो कृष्ण कृष्ण इसका वर्णन कर रहे हैं अथवा कृष्ण वर्णन त्रिषा कृष्ण जिनका विग्रह गौर वर्ण का कांति से त्रिषा अकृष्ण किंतु मुंह से जिनके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण वर्णन त्रिषा कृष्णम सांग पांग अस्त्र पार्षदम जो अंग नित्यानंद प्रभु जी और अद्वैताचार्य प्रभु जी सांग पांग अस्त्र हरिनाम संकीर्तन पार्षद श्रीवास पंडित प्रवृत्ति के संग में लेकर के जो जगत जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि यज्ञ संकीर्तन परायेर जजन इस कलयुग में अगर कोई यज्ञ है तो केवल संकीर्तन यज्ञ है क्योंकि इस जग में किसी प्रकार का व्यवधान और त्रुटियों के होने पर भी ये पूर्ण हो जाता है। अन्य यज्ञों को करने में अगर कोई व्यवधान हो जाए त्रुटि हो जाए कुछ कमी रह जाए तो उसका उल्टा भी फल होता है क्योंकि नाम संकीर्तन जो यज्ञ है ऐसा पवित्र यज्ञ है कि जिसके लिए कोई दोष आदि का विचार नहीं ऐसे निर्दोष हो तो अच्छी बात है लेकिन अगर दोष पूर्ण भी हो कहीं पर ऐसा भी शास्त्र में आता है कि धीरो बदती विष्णवे और मूर्खो बदती विष्णाय उभायो अस्तु समम पुण्यम भावाग्राही जनार्दन मूर्ख होता है जो व्याकरण आदि का ज्ञान प्राप्त न किया हो वो विष्णवे चतुर्थी विभक्ति को विष्णायक नमः कह के भगवान को प्रणाम करते हैं जो विद्वान वो विष्णवे नमः कहते हैं लेकिन दोनों का सामान्य पुण्य होता है किंतु यज्ञ आदि में साधारण अगर मंत्र की थोड़ी भी त्रुटि रह जाए इंद्र शत्रु विवर्धस्व जहाँ उदात अनुदात तो उसका उल्टा हो गया तो ऐसे यज्ञ संकीर्तन यज्ञ को जिन्होंने प्रचार किया ऐसे महापुरुष श्री गौहरि की वंदना करते हैं। आज तो रामनवमी का दिन है महापुरुष महाराज जी के मुखारविंद से राम कथा सुने किस प्रकार अवधूत प्रकट हुए और महाराज जी तो उसी स्थान के है बक्सर का जहाँ पर भगवान राम जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे और जहाँ पर वन की जो सौंदर्य देखे थे बड़े रमणीय स्थान है प्रभात बाता हति कंपिता कृति कुमुदवती रेणु पिसंग ब्रिग्रहम निराश भृंगम कुपित एव पद्मनी नम मानी संसहत्यंग संगमम बनानी तोयानी चन्नित्र कल्प जहाँ कवियों ने जिस बक्सर को बड़े सुंदर रूप से उस स्थान का वर्णन किया जहाँ के नदियाँ सरोवर इतने सुंदर है राम जी जब देखे विश्वामित्र जी साथ मंत्र मुग्ध हो गए थे। ये सब कथा आप लोग श्रवण करेंगे मैं यहीं पर अपने वचन को विराम देता हूँ। वंशा कल्प तरु कृपा सिंधु
को देखना है
आगे
अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनोऽपि रहकातरयाजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्भोभिनेभि तं सर्वभूतविलयम् त्वैवास्मि त्वैवास्मि यजमान त्वया विना इति विज्ञाय राधे हम लोग परसों से ही भगवान श्री रामचंद्र जी की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। हमने बतलाया था वाल्मीकि जी इस अलंकार अनुप्रास इत्यादि के सहित इस वाल्मीकि रामायण को लिखा, लवकुश को पढ़ाया। लवकुश ने राम की सभा में इसका वर्णन किया, फिर और भी सीता जी का पताल प्रवेश इत्यादि हमने वर्णन किया। तो पहले प्रारंभ में हमने बतलाया नारद जी ने वाल्मीकि को राम के सारे चरित्रों का वर्णन करके सुनाया और फिर उनको कहा समाधि योग में तुम इसका अनुभव करो। जैसे नारद जी ने व्यास जी को कहा समाधि में सब लीलाओं का दर्शन करोगे और फिर उसी को ही लीलाओं का वर्णन करो। उसी प्रकार से नारद जी ने कहा समाधि योग में आंवले की भांति हाथ में रखे हुए आंवले की भांति उन सब लीलाओं का दर्शन करो और उसको अनुभव करो जिसको श्री रामचंद्र जी ने अकेले किया, वहाँ पर कोई नहीं और उनका कोई भी भाव नहीं जानता, उन लीलाओं को भी। इसके अतिरिक्त और भी जो गुप्त लीलाएं हैं मैंने नहीं कहा है उसको भी तुम अनुभव करो, कह करके चले गए। और तब वाल्मीकि जी उन लीलाओं का जो भक्ति योग में बैठ करके अनुभव किया, अनुभव करके क्या देखा उसी का वर्णन कर रहे हैं महात्मा नारद जी ने। पहले जैसे वर्णन किया था उसी क्रम से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण राम के चरित्र रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है उसी प्रकार से यह महाकाव्य गुण अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ प्रतिपादक होने के कारण बहुत ही कर्णप्रिय, बहुत ही सरस और करुण भावपूर्ण है। राम की लीलाओं को सुनकर के कृष्ण की साजी कोई नहीं रोएगा, किंतु राम की जो लीलाएं करुण की हैं उनको साधारण मनुष्य भी जिनको भक्ति नहीं है वो लोग भी रो देंगे। अब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का जन्म देखा, कैसे जन्म हुए, उनका महान पराक्रम, उनकी सर्व अनुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य स्वभाव, सत्यशीलता, इन सब का महाकाव्य में वाल्मीकि जी ने वर्णन किया। अब जन्म के बाद में वशिष्ठ जी से चारों भाइयों ने शिक्षा ग्रहण की, अस्त्र शस्त्र, संगीत इत्यादि 64 कलाएं, जैसे कृष्ण ने सांदीपनी से सुनी, ऐसे इन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की। यहाँ तक कि उपवास रहना, कुदाल चलाना, लकड़ी चीरना, जितने प्रकार के वनवास में जो कष्ट हो सकते हैं, वशिष्ठ ने जान करके ये भी हो सकता है वन में जाना पड़ेगा, क्या क्या कष्ट होगा, इन सब कष्टों को झेलने के लिए भी उनको सबको सिखलाया। दुख आने पर भी धैर्य धारण करना, ये सब सिखलाया। इसके बाद में विश्वामित्र के साथ में जा करके विचित्र विचित्र लीलाएं की, सिद्धाश्रम में गए उनके साथ में, और वहां पर ताड़का सुबाहु इत्यादि कितने हजार राक्षसों का ध्वंस किया, मरीचु को ऐसा बाण मारा कि वो लंका में, समुद्र में लंका के निकट जाकर के गिर पड़ा, मरा नहीं, क्योंकि उसे कुछ काम था, सीता जी का चोरी इत्यादि होना था, इसलिए उसको जान से नहीं मारा। ये सब लीलाएं की, ये सिद्धाश्रम में ही मेरा जन्म है, बक्सर में गंगा के तट पर, इसलिए बचपन से ही मैं राम का भक्त था, उन्होंने कृपा करके हमको कृष्ण की लीला में हमको प्रवेश कराया, और महाप्रभु जी के इन सब का महर्षि ने वर्णन किया। देखा तो था नहीं, किंतु समाधि में ये सब देख करके लिखते हैं। फिर वहां से मिथिला जाने के रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया,
अहल्लावली
अहल्यावली जगह है, वो हम लोगों के घर से निकट ही है, वहां पर अहल्या का उद्धार किया। पत्थर बनी हुई थी, विश्वामित्र की इच्छा से सब सुन करके अपने चरणों से स्पर्श किया, और वो महान सुंदरी देवी के रूप में प्रकट हो गई। फिर उनके पति से फिर उनका मिलन करा दिया, उनके पुत्र का नाम
सदानंद,
सदानंद था, जो महाराज जनक के
राजपुरोहित थे,
राजपुरोहित थे, सुनकर के बड़े खुश हुए, मिथिला में गए। मिथिला में उनका जाना और सीता जी से मिलने का भी बड़ा सुंदर सरस वर्णन है। जब बगीची में अपने गुरु जी के पूजा के लिए श्री रामचंद्र जी पुष्प संग्रह करने के लिए गए, उस समय सीता जी भी अपनी सहेलियों के साथ में देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी, और बाई चांस उस समय राम ने सीता को, सीता ने राम को देखा, राम का मन निकल करके सीता जी के यहाँ पर पहुँच गया। जब सब पहुँच गया, आसक्त हो गए, तो लक्ष्मण जी से ने कहा, भाई आज हमने बहुत अधर्म किया, एक जुआ नारी के प्रति हमारा मन दौड़ गया, ऐसा तो रघुवंश में किसी का नहीं होता, तो मुझे धिक्कार है। लक्ष्मण जी ने कहा, जब नहीं, रघुवंशियों का मन किसी प्रकार से भी नहीं जाता, और यदि आपका गया है तो उसके साथ में जरूर आपकी शादी होगी। और इसके बाद में यही हुआ, जिसको असुर देवता गंधर्व राक्षस रावण बाणासुर भी जिस धनुष को हिला ही नहीं सके, सीता जी अपने हाथों में उठा करके उसको लिपोत देती थी। महाराज जी ने जनक ने देखा, उन्होंने यही प्रतिज्ञा कर डाली, इस धनुष के प्रत्यंचा जो उठा करके चढ़ा देगा शिव का धनुष, सीता जी से शादी हो। और रामचंद्र जी ने क्या किया, गुरु जी को प्रणाम किया और सहज रूप में, और वो सब राजा लोग उनको ठट्ठा उपहास कर दे, इतने बड़े बड़े वीर लोग हार गए और ये धनुष चढ़ाएगा,
चिड़िया होकर पर्वत उठाएगा।
और रामचंद्र ने झट उसे उठाकर और प्रत्यंचा चढ़ाते समय में वो तीन टुकड़े हो गया, सीता जी को लाया गया। किंतु इतना प्रेम, जय राम के गले में वो माला देने के लिए हाथ नहीं उठा सकती थी, और उस समय सहेलियों ने उनको हाथ को अपना सहारा दे करके उठवा करके राम के गले में बैठ थी। विवाह हो गया, विवाह होने के बाद विवाह हुआ, उस समय में महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ में आए, वशिष्ठ जी के साथ में आए। उस समय में सीता जी के विवाह के साथ ही साथ में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की शादी हुई। महाराज जनक की एक औरस जात कन्या थी
उर्मिला,
उससे
लक्ष्मण
जी का, और उनके भाई कुशध्वज की
दो
लड़कियां थी
सुतकीर्ति मांडवी,
उनके साथ में भरत शत्रु। विवाह खूब आनंद से हो गया, और जब बारात लौटने लगी, ओ धनुष तोड़ने का प्रचंड शब्द सुन करके मलयगिरी पर्वत से, महेंद्रगिरी पर्वत से फरसे धनुष बाण लेकर के वहां पर पहुंचे, कौन तोड़ा है बतलाओ, धनुष कौन तोड़ा, सब सन्नाटा में आ गया, सब लोग एकदम भयभीत हो गए, अरे जनक बतलाओ नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। कौन नोकझोंक होने पर लक्ष्मण जी ने कहा, जी प्रभु लड़कपन में तो ऐसी धनुहिया धनुहिया मैंने क्या,
छोटे बच्चे धनु, छोटा सा धनु,
ऐसी धनुहिया तो हमने हजारों तोड़ डाली है, तो उस समय तो आपको कोई भी
क्रोध नहीं हुआ।
आज इस एक धनुषिया के टूट जाने पर, अरे भाई बैठो
ना, अभी मत कर रही
है, अभी बैठो, इतना तुम नाराज हो रहे हैं क्यों, तो हम तो कुहण की बतिया नहीं है, कुहण माने काशी फल,
छोटा बच्चा दिखाने पर
सड़ जाता, ऐसे ऐसे करने से, ऐसे तुम जाओ तो बैठो तो चुपचाप, कोहण यदि
छोटा
हाँ तो उसका ने हाथ से दिखलाने से वो मर जाता,
सड़
जाता है। तो हम वैसे नहीं है, जितने चिढ़ते उनको क्रोधित करते 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 और क्रोध करते हैं, और उनका वो भाव भगवत भाव
छाय है या नहीं,
जो शक्ति का आवेश था भगवान का
वो
दूर होने लग गया। अंत में रामचंद्र जी ने कहा, जैसे महाराज मैंने धनुष तोड़ा है, ये छोटा दुधमुखा बच्चा है, और आप जटाजूट लेकर के ऐसे आते तो कोई बात नहीं, फरसे लेकर के धनुष बाण लेकर के और भय दिखला रहे हैं, हमारे रकुल में यदि किसी को आप युद्ध से ललकारेंगे तो जम भी होगा तो हम उससे लड़ लेंगे, तो आपने ऐसा भय दिखाया इसलिए, और यदि ऐसी बात है तो आपकी जो इच्छा है सो कर लीजिए। सुनकर के क्या कर, ये कौन है, भाई तुम्हारा नाम क्या है, हमारा नाम तो भाई छोटा सा है, तुम्हारा तो परशुराम, मेरा नाम क्या है, केवल छोटा सा राम, आपके सामने भला मैं कौन हूं। फिर उनकी वो समझ गए उन्होंने अपना एक धनुष शंकर का और था, इसको चढ़ाओ तो जैसे रामचंद्र जी ने हाथ में लिया और झट, अब समझ गए, अब हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति करने लगे। राम ने कहा जी ये तो बात हुई, किंतु मेरा धनुष पर जब बाण चढ़ जाता है
व्यर्थ नहीं जाता है,
तो वो व्यर्थ नहीं जाता, अब बतलाइए ये बाण कहाँ छोड़ूं। आपके जो कर्म हुए हैं तपस्या है इसके ऊपर में छोड़ूं ना आपके ऊपर में छोड़ूं? आपके ऊपर में छोड़ेंगे तो आप मरेंगे, आप कर्म फलो जो तपस्या इत्यादि का फल है
तो नष्ट हो जाएगा सब,
तो वो नष्ट हो जाएगा। अपने सोच विचार करके उन्होंने कहा कि हमारे कर्मों तपस्या इत्यादि का फल है वही हो जाए, मैं महेंद्र पर अब जा करके अब आराधना करूं, ऐसा ही आप बोलना। ये सब घटनाएं हुई। राम और परशुराम का संवाद ये सब बतलाया। दशरथ राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, कल हमने बतलाया था कैकेयी ने ऐसा वर क्यों लिया राम के विशेष आग्रह करने से, और यदि कैकेयी वर नहीं मांगती वनवास का, राम का वनवास नहीं होता, सीता की जी की चोरी नहीं होती, बाली का वध नहीं होता,
राक्षस
ये कुंभकर्ण और रावण का मेघनाथ जैसे लोग, इनका कभी भी वध नहीं होता, और पृथ्वी का भार उतरता नहीं। इसके साथ साथ हनुमान इत्यादि का पराक्रम और उनकी भक्ति भी प्रकाश नहीं होती। सब कुछ कैकेयी ने, कैकेयी महारानी ने कलंक सह करके भी राम के लिए ये सब किया। रामचंद्र जी चले, महाराज दशरथ ने कहा इनके साथ में सारी सेनाएं, सारा कोष खजाना, मंत्री वर्ग भी जाए। तो कैकेयी ने कहा जो तो ये सुने राज्य को लेकर के क्या करेगा हमारा बेटा,
राजा ही हो गया तो अधिकार कहाँ
रहा, तो फिर राजा कहाँ रहा। फिर वशिष्ठ जी के कहने से नहीं गया, किंतु अपने सारथी को भेजा और वो निषाद राज के राजधानी में पहुंचे। निषाद राज ने कहा प्रभो हमारे राज्य का आप राजा होकर के रहें, यह राज्य आपके चरणों में निछावर करता हूं, ये भी तो बन ही है यहीं पर ही है। रामचंद्र जी नहीं माने, सुमंत को वहीं से बड़े कह सुन करके उनको लौटा दिया और निषाद राज को लेकर के चित्रकूट तक गए, चित्रकूट से उसको भी लौटा दिया। श्री राम आदि का गंगा पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन, भरद्वाज जिसने जब भरत आए थे पहले तो राम और लक्ष्मण सीता जी का अभिवादन किया, और इसके बाद में उन्होंने ही बतलाया कि चित्रकूट में आप रहिए, वही आपके लिए स्थान उपयुक्त है। और जब उनको भरत जी मिलने के लिए आ रहे थे, चतुरंगणी सेना सब लोगों के साथ में, इन्होंने कहा आज हमारे यहाँ आपका भोजन हो, सब लोगों का था तो कुछ नहीं उनके पास शंकर जी के समान, किंतु साथ ही साथ में अपने तपस्या से जो बल से लाखों करोड़ों लोगों को भोजन करा दिया और सबके रहने के लिए स्थान, सुंदर सुंदर स्थान राजभवन जैसा बना दिया, हाथी घोड़ों को खाने पीने सबकी व्यवस्था कर दी, अद्भुत। फिर वहाँ से चित्रकूट गए, वहाँ चित्रकूट की बातें हमने कैसे भरत जी आए
कल बताया आपने,
और किस प्रकार से जनक जी ने उनको समझाया, भरत जी उनकी खड़ाऊँ लेकर के अयोध्या लौट गए, नंदीग्राम में रह करके वनवासी की भांति अपनी स्त्री को भी अपने साथ नहीं रखा, वहाँ पर रहने लगे। और एक दिन उनकी मैया कैकेयी उनसे मिलने के लिए वहाँ पर नंदीग्राम में आई, भरत से मिली, किस लिए आई है महारानी, माता जी नहीं तो मुझे महारानी कहते हो, माता नहीं कह सकते, मेरी माता तो मर गई, वो जो मेरी मैया थी वो तो बड़ी स्नेहशील थी,
परम स्नेहमयी,
महारानी आप में ये सब नहीं देखता, कहिए आपको क्या काम है, आपका वो काम करवा दूंगा, आप जाइए। नहीं बेटी, मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, ये नहीं हो सकता। तो वहाँ पर हमको बिच्छू और सांप जैसे डंक मारते हैं, उस राजमहल में मैं अकेली नहीं रह सकती, उन्हें तुम्हारे लिए यही प्रायश्चित है, जो कर्म किया उसका फल भोगो, यहाँ से चली जाओ उसी राजमहल में, तुमने तो राजमहल मांगा था, अब राजमहल में रहो, आप महारानी हैं। बहुत विचित्र विचित्र कथाएं हुई। वहाँ से अयोध्या लौट गए भरत जी, और वो उन्होंने देखा कि ये तो लोग आते रहेंगे अयोध्या से, उसको छोड़ करके दंडकारण्य में जा रहे हैं। विराध नामक एक असुर रास्ते में मिला, बड़ा भयंकर, वो झट इनको देख करके सीता जी को पकड़ लिया, राम और लक्ष्मण देख करके बड़े विषादग्रस्त हुए। राम कहते हैं कि आज इसकी कैकेयी की बात पूरी हुई, आज सीता जी को भी ये ले जा रहा। लक्ष्मण जी ने उनको ढांस बढ़ाया और फिर दोनों भैया मिल करके उसे बाणों से मारा, हाथ काट दिया, मरा नहीं, तो यही मरता नहीं है, तो उसी ने कहा ऐसे नहीं मरूंगा, यदि पृथ्वी में हमको गाड़ दिया जाए तब तो मरूंगा, बाणों से और किसी तरह से, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, वो नहीं मरा। तब फिर दोनों ने उसे पकड़ करके गिरा करके लक्ष्मण जी ने कुदाल से गड्ढा खोदा और दोनों ने मिल करके उसको ढकेल दिया। जब वो नीचे गिर गया तो बोला आज मैं धन्य हो गया, एक ऋषि ने मुझको अभिशाप दिया था, आपके स्पर्श से मैं पवित्र होकर अब देवलोक में जा रहा, दिव्य शरीर निकला और उनको परिक्रमा करके और चला। इसके बाद में सर्भंग ऋषि, एक ऋषि थे राम और लक्ष्मण जब वहां पर गए उनसे मिलने के लिए, देखा कि इंद्र स्वर्ग से विमान के द्वारा आकर के उनसे मिलने जा रहा है, और उनसे प्रार्थना की ऋषि से
देवलोक चलिए,
ये आप देवलोक में चले तो तुम्हारे ले जाने से नहीं, अपने कर्मों के बल से तपस्या के बल से जाऊंगा, ऐसे नहीं। इतने में देखा जी से निंद्र से कहा जी अब आप जाइए, श्री रामचंद्र जी आए हैं उनसे हमको मिलना है। फिर राम से मिले, मिलकर के कहे जी मैं जाना चाहता था ब्रह्मलोक, उसी समय आप कृपा करके आए, आप कृपा कीजिए जी मैं जाऊँ, और जोगाग्नि से अपने शरीर को चला करके देव रूप में ब्रह्मलोक में चले गए। ऋषि का दुर्भाग्य था, कहाँ से रामचंद्र की लीलाओं में प्रवेश करते, वो ब्रह्मवादी ऋषि ब्रह्मलोक में गए। उनको अकल नहीं आई। इसके बाद सुतिष्ठ नामक एक ऋषि थे जो कीर्तन में संलग्न रहते थे और राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी आगे जाते कीर्तन, कभी पीछे, कभी लौट जाते कीर्तन में। इन्होंने राम ने उन पर कृपा करके और उनको अपने धाम में पहुंचाया।
शाम का बोलबन था,
अनुसुईया जी मिली
अधिकाला बोलबन था,
था, था। अनुसुईया जी, अत्रि जी, जिनके बेटे बन करके ब्रह्मा विष्णु महेश थे, अनुसुईया जी। अनुसुईया जी ने सीता जी को अलंकार दिया कुछ और वस्त्र और अंगरा। कभी भी इनको भूख नहीं लगेगी, कभी भी उनको वस्त्र नहीं बदलना पड़ेगा, स्नान करने की जरूरत नहीं होगी। ये दे करके उनको दिया और सीता जी को अपने आप पहना दिया। ये वन जंगल में जाना है, तुम्हारे कपड़े कभी भी मैले नहीं होंगे, तुम्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा, तुमको भूख प्यास भी नहीं लगेगी। इसलिए लंका में कुछ नहीं खाया पिया, स्नान नहीं किया, कुछ नहीं किया, किंतु ठीक बनी रही। इसके बाद सीता जी को अंगराग इत्यादि समर्पण करना। इसके बाद में अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। वहां पर मृगा, हिरण और शेर, बाघ, भालू सब एक घाट पर पानी पीते, बड़े मित्रता करते। वहां पर किसी को किसी से शत्रुता नहीं थी। वाल्मीकि आश्रम में जाने के बाद में वाल्मीकि जी ने इनको बहुत अस्त्र शस्त्र दिए, जो कि रावण को वध करने के लिए ये काम में आए। उन अस्त्र शस्त्रों को लेकर के वैष्णव धनुष ग्रहण किया, श्रुपनखा आई। ठहर जाओ थोड़ा। राम की आज्ञा से लक्ष्मण उसकी नाक कान काट दी, आप लोग सब जानते हैं। खरदूषण, तृष्णा इत्यादि का वध किया और शूर्पणखा के उच्छेदित करने से रावण राम से बदला लेने के लिए मारीच के साथ में उसे हिरण सोने का बनाकर भेजा। राम उसके पीछे दौड़े, जब देखा आश्रम में कोई नहीं है, लक्ष्मण जी। सीता जी बोली, तुम जाता क्यों नहीं है, जाकर के अपने भाई की रक्षा करो, मेरे अपने भाई की। ऐसा मत समझो कि राम के मारे जाने के बाद में हम तुमसे शादी करेंगे, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। इसीलिए आया तुम भरत का गुप्तचर है। सुनकर के उनको बड़ा क्लेश हुआ और उन्होंने एक गोलाकार चिन्ह बना दिया आश्रम के और चले गए। इधर रावण आया, उसे पार करके सीता जी को हरण करना चाहता था, किंतु जो ही पैर रखे आग निकले, नहीं भीतर जा सका। भिक्षांग देही, भिक्षांग देही, भिक्षांग देही करने लग गया। उस समय में सीता जी देने लगी, किंतु कहा जी हम इस गंडी में हम नहीं लेंगे, निकल करके आओ, और नहीं आती है तो तुम्हारे पति का वध होगा।
अभिशाप दे दो,
मैं अभिशाप देता हूँ। ऋषि त्रिदंडी स्वामी का भेष बना कर आया। सीता जी डर गई, सीता जी डर गई। और उसी समय में रामचंद्र जी इस लीला के पहले अग्नि को सौंप दिया था। अब छाया सीता काम कर रही, असल सीता अग्नि के पास में रह गई। फिर वैदेही का हरण किया, रघुनाथ जी विलाप करने लगे। रावण ने जटायु का वध करके सीता को ले गया। सीता जी ने अपने अलंकार की पोटली, जहाँ पर हनुमान जी,
सुग्रीव,
नल, लिंग, अंगद इत्यादि बंदर बैठे थे, उसी ऋषिमुख पर्वत पर गिरा दिया। उनको उन्होंने लेकर के देखा और रख दिया। फिर पंपा सरोवर में आए। जटायु के कहने से उनको ये पता चल गया जय रावण ही ले गया है, किंतु कहाँ ले गया है ये पता नहीं चला। फिर उन्होंने सबरी से मिलने के लिए कहा, सबरी कौन सी थी, सबर जाति की, राम के लिए प्रतिदिन बेर खाती या और फल, और जिस पेड़ के फल मीठे होते उसको रखती, फूलों से उनके मार्ग को सजाती। राम आ जाएंगे, हमारे गुरुजी ने कहा है जरूर आएंगे। कुछ दिनों के बाद में फिर रामचंद्र जी आए, किसी भी ऋषि महर्षि के आश्रम में नहीं गए, सीधे इसके पास में गए और अपने बेर को उन्होंने, उसने कहा झूठी बेर कहते हैं, झूठी तो नहीं किंतु हाँ, उस फल के पेड़ को के फलों को चक करके रख दी। उससे रामचंद्र जी बड़े संतुष्ट, उन्होंने पंपासर में जाने के लिए रास्ता बतला दिया और अब राम ने उसको अपने धाम में पहुंचा दिया। वहां पर जाकर के हनुमान जी से भेंट हुई पंपासर में, किष्किंधा के निकट। हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश बना करके उनके निकट आए और बड़े थोड़े से ही शब्दों में संस्कृत भाषा में उनसे राम का परिचय पूछा। तो बोले ये साधारण आदमी तो ऐसा नहीं पूछ सकता है, आप कौन हैं, नहीं बतला रहे, बतलाइए। तो मैं आपका सेवक हूँ। फिर अपना हनुमान रूप दिखाया और उनको लेकर के सुग्रीव के पास में गए, सुग्रीव से मित्रता हुई, अग्नि की साक्षी दे करके बाली का वध किया। इसके बाद में सुग्रीव जी ने हनुमान इत्यादि को दक्षिण में भेजा सीता जी का पता लगाने के लिए। हनुमान जी समुद्र को लांघ कर लंका में गए, सीता जी से भेंट की, राम की दी हुई अंगूठी उनको विश्वास के लिए दिया और फिर वहाँ पर फल खाने के बहाने समस्त बागान को बगीचे को उजाड़ दिया और वहीं से आम की गुठली फेंकी। भारतवर्ष में बड़े बड़े सुंदर सुंदर आम होने लगे, ये लंका के मीठे ये आम सब हैं, चौसा कहते हैं और कौन,
दशहरी
और कौन कौन से
लंका अल्फोंसो।
इसके बाद में हनुमान जी लंका को जला करके लौट आए, राम से संवाद दिया और सीता जी जे
क्या थी
चूड़ामणि राम को दिया, राम को विश्वास हुआ जो उनसे मिलकर। फिर आक्रमण करने के लिए विजयादशमी के दिन में विजय यात्रा की, समुद्र के पास में गए, समुद्र से कहा जे रास्ता दो, जब उसने नहीं दिया तो धनुष बाण उठाया तो उन्होंने कहा जी नलिन से समुद्र को बंधवा करके पुल बंधवा करके हमारी मर्यादा भी रहे। पुल बंधवाया और सारी बंदरों की सेना वहाँ पर गई और फिर राम रावण से युद्ध हुआ। उसमें सब लोग मेघनाद कुंभकर्ण अहिरावण जितने भी उनका वंश था, 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती सभी ध्वंस हो गए। सीता जी को बुलवाया, सीता जी आई, कहा जी आप तो कितने महीने तक असुर के घर में थी, मैं आपको ग्रहण नहीं करता, आपकी जहाँ इच्छा हो चली जाए। सीता जी ने कहा जी लक्ष्मण यद्यपि हमने तुम्हारे चरणों में अपराध किया है, शायद उसी का ये फल है, तुम हमारे लिए चीता बना दो, उसमें हम प्रवेश कर जाएं। लक्ष्मण जी ने भाई की तरफ में देखा, अब क्या कर रहे हैं, सीता जी निर्दोष हैं, जानते हुए भी ऐसे कर रहे हैं, बहुत कुछ बोलने लगे। राम ने इशारा किया जरा ठहरो। तो फिर जब चीता बना दी गई, सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई और उसमें अग्निदेव सीता को लेकर के प्रकट हुए। वो जो अग्नि को पहले सौंपा था आज उनको लौटाया और छाया सीता
अंतर्धान हो गई।
फिर उनके साथ में अयोध्या में आए, फिर उनका भरत से मिलन हुआ, फिर राज्याभिषेक हुआ और फिर कितने हजार वर्ष तक राज्य किए, अंत में फिर सीता जी को एक ग्रामीण धोबी के कहने से वन में भेजा। वन में ही उनको लवकुश की पैदा हुई। वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश ने सीखा सब कुछ। इस प्रकार से सीता जी किस प्रकार से पाताल में प्रवेश की गई ये सब बतलाया। इति श्री
रामायण।
शाम को अभी अभिषेक होगा, अभी हरि कथा होगी, ये रामायण का गान होगा और रामायण का भी ये लोग गान करेंगे और ये चलता रहेगा 4 बजे 5 बजे तक। 5 बजे हम भी फिर आएंगे। दोपहर में अभिषेक होगा। अभिषेक करने के बाद में अनुकल्प होगा, चरणामृत लेकर के अनुकल्प होगा और फिर कथा चलती रहेगी। शाम को 5 बजे फिर मैं आऊँगा, फिर हरि कथा होगी और इसके बाद समाप्त होगा। गौर प्रेमानंद।